राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा बन चारी, यमुना तीरा बन चारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, परिव्राज गचार्य स्तोत्र श्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रभुस्कोन फाउंडर आचार्य शिवदी होलवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ति वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सखी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरदाय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता तथा रूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या 14 निकाल लिया। बोलिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा, आगमा पाइनो नित्यास तांत तिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा, आगमा पाइनो नित्यास तान्तितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगमापायिनो नित्याः तान्तितिक्षस्व भारत। शब्दार्थ बोलिए। मात्रा स्पर्शाः इंद्रिय विषय तो केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र शीत जाड़ा उष्ण ग्रीष्म सुख सुख दुख तथा दुख तथा दुख दाहा देने वाले आगम आना अपाइनः जाना अनित्याः क्षणिक तान उनको तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो भारत हे भरतवंशी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। बोलिए।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सलंकयम् चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुनवादी आशात देश तारिणे।
श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। इंद्रियों का जो स्पर्श है, विषयों से जो स्पर्श है वो सुख दुख प्रदान करने वाले हैं, सर्दी गर्मी के समान सुख दुख प्रदान करने वाले हैं। आगमा पाई नित्यास अनित्य हैं, आते जाते हैं, तां तितिक्षस्व भारत है। इसलिए अर्जुन इनको तुम सहन करो। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो यहाँ अभी हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी ने जो बातें कही हैं तात्पर्य में, बहुत ही सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपने कर्तव्य के पालन करने में जो भी सुख और दुख हो उनको सहन करो। सुख को भी सहन करो और दुख को भी सहन करो, है ना। सुख भी बाधा डालता है, है? दुख में कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, है ना। लेकिन सुख में भी ऐसा होता है, बहुत खुशी होती है तो खुशी के मारे कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है, है कि नहीं। सुखी में इतना सुख में इतना ज्यादा वो हर्षित होता है कि वो जो ना अपने कर्तव्य को भूल जाता है, है ना। तो सुख और दुख दोनों ही बाधा डालने वाले हैं। और भगवान कहते सहन करो, सुख के वेग को भी सहन करो। और फिर आने जाने वाले हैं, भगवान के आने जाने वाले हैं, तो सुख में कोई व्यक्ति फिर हर्षित ना हो। सुख में हर्षित नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये चला जाएगा, है कि नहीं। और दुख में उद्विग्न नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, क्यों? क्योंकि ये भी चला जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से भगवान के अनित्य हैं, है? तो हमें जी जो अनित्य हैं तो इनसे विचलित ना हो, इनके कारण हम अपने कर्तव्य से विचलित ना हो, क्योंकि कर्तव्य का पालन करने से हमको कुछ नित्य वस्तु की प्राप्ति होने वाली है। कुछ नित्य है, नित्य क्या है? ज्ञान। रूपा जी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान और भक्ति से ही मनुष्य अपने को माया के बंधन छुड़ा सकता है। तो इसलिए स्थिरता पूर्वक जो है धर्म का आचरण करना चाहिए व्यक्ति को। और भगवान कह रहे हैं कि इनको सहन करो, सुख और दुख को दोनों को सहन करो, सुख दुख की चिंता ना करो। आगे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से दो नाम है इस श्लोक में अर्जुन के, कौन बताएगा? तो अर्जुन को भगवान ने दो नामों से संबोधित किया है। एक ही श्लोक में भगवान दो नाम बोल रहे हैं अर्जुन के, किसका मतलब क्या है कि बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है इस श्लोक में, इसलिए भगवान अर्जुन को दो नाम मुझसे पुकार रहे हैं, है ना। तो एक नाम है कौनते और दूसरा नाम है भारत। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि ये दो नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। कौनते कहकर संबोधित करने से ये प्रकट होता है कि वे अपनी माता की ओर यानी मातृकुल से संबंधित हैं। हाँ, कौनते, कौनते का मतलब क्या है? कुंती पुत्र है, तो कुंती भगवान की बुआ है। तो कौनते कहने का मतलब यह है कि अर्जुन, तुम्हारा संबंध मुझसे है, इन संसार के सुख दुखों से तुम्हारा संबंध नहीं है, है ना। कौनते कहकर भगवान बोलते हैं। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं, और भारत कहने से उनके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। हाँ, अर्जुन को भगवान ने भारत कहा, तो भारत का मतलब क्या हुआ? भरतवंशी, भरत के वंश में तो भारत कहलाते हैं। तो भरत यानी पिता का वंश है कि नहीं। तो पिता जो है महाराज पांडु, महाराज पांडु के वंश में पैदा हुए हैं। तो प्रोपल लिखते हैं आगे, दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। हाँ, तो अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकते ना। पहले अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा था? बहुत विचलित हो रहे हैं क्योंकि अपने संबंधियों से युद्ध करना है। तो अर्जुन कैसे विचलित हो रहे हैं? अर्जुन का धनुष खिसक रहा है। गांडीवम संसदे हस्तात, अर्जुन ने कहा है कि मेरा गांडीव धनुष गिर रहा है, हाथ से छूट रहा है। सीदंती मम गात्राणी, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है ना। तो ये सब क्या है? दुख का वेग। तो भगवान कह रहे हैं कि इनको सहन करो, अपने कर्तव्य से विचलित मत हो, है ना। अच्छा, अब इसी श्लोक पर जो मेरा लेख भगवत दर्शन में छपा था, इसे मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में श्री भगवान अर्जुन को स्पष्ट आदेश दे रहे हैं कि अपना कर्तव्य पालन करने में जो भी सुख या दुख आते हैं उनसे वे विचलित ना हो। भगवत गीता का ज्ञान अत्यंत व्यावहारिक है। ये ज्ञान वास्तव में जीवन में उतारने के लिए है, है ना। श्लोक संख्या 12 में भगवान ने बतलाया था कि प्रत्येक जीवात्मा नित्य है, तथा श्लोक संख्या 13 में उन्होंने बताया कि देह हमेशा परिवर्तनशील है, तथा धीर व्यक्ति देह के परिवर्तन को देखते हुए भी जीवात्मा को सदा अपरिवर्तित मानकर इस विषय में कभी भी भ्रमित नहीं होता है। अब इस श्लोक में भगवान धीर पुरुष का व्यावहारिक रूप बतला रहे हैं, ठीक है ना। पिछले श्लोक में भगवान कहा था धीरस तत्र न मोहयति, तो धीर पुरुष है वो मोहित नहीं होता है, है ना। पिछले श्लोक में भगवान ने धीर पुरुष का एक लक्षण निश्चित के रूप में बतलाया था कि वह क्या नहीं करता है। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था? धीरस तत्र न मोहयति, कि क्या नहीं करता है वो, अर्थात वह देह परिवर्तन से विचलित नहीं होता है। परंतु आप इस श्लोक में भगवान धीर पुरुष का एक अन्य लक्षण विधि के रूप में बतला रहे हैं कि वह क्या करता है, है ना? अर्थात वह इंद्रिय बोध से उत्पन्न सुख और दुखों को सहन करता है, है ना। पिछले श्लोक में भगवान ने देह परिवर्तन की चर्चा की थी, तथा इस श्लोक में भगवान इंद्रियों के सुख और दुख के परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द है क्या? प्रारंभिक शब्द क्या है इस श्लोक के, आज का श्लोक है, इसके प्रारंभिक शब्द क्या है? मात्रास्पर्शास्तु, मात्रा का अर्थ है इंद्रियां। इंद्रियों को मात्रा क्यों कहा जाता है? इंद्रियों को मात्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंद्रियां सदा सुख और दुख की मात्रा को नापती रहती हैं। क्या समझे? इंद्रियां सुख और दुख की मात्रा को सदा नापती रहती हैं। जीवात्मा देह में स्थित होकर सदा यही निरीक्षण करता रहता है कि उसे किस इंद्रिय के माध्यम से सुख की कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है या उसे किस इंद्रिय के माध्यम से दुख की कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है। जो व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख और दुख की मात्रा पर ही सदा विचार करता रहता है वह इंद्रियाराम कहलाता है। परंतु जो व्यक्ति आत्मा के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख और दुख की मात्रा पर ही सदा विचार करता रहता है उसे आत्माराम कहते हैं। जो आत्माराम है वह जानता है कि आत्मा का असली सुख क्या है, कृष्ण की सेवा करना, श्री कृष्ण की सेवा करना है, तथा आत्मा का असली दुख क्या है, माया की सेवा करना है ना। इस प्रकार आत्माराम व्यक्ति सदैव विचार करता रहता है कि वह कितनी मात्रा में श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है तथा कितनी मात्रा में माया की सेवा में लगा हुआ है। आत्माराम विचार करता है इस प्रकार वह जितनी अधिक मात्रा में श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है उतनी अधिक मात्रा में वो अपने को सुखी देखता है कि मैं इतना सुखी हूं, कितना, जितना कृष्ण की सेवा कर रहा हूं उतना अपने को सुखी देखता है, वास्तव में अनुभव करता है कि हाँ सुखी हूं मैं। और जितनी मात्रा में वो माया की सेवा में लगा हुआ है उतनी अधिक मात्रा में वो दुखी है, वो इस बात का विचार करता है, प्रत्यक्ष देखता है। इस प्रकार आत्माराम व्यक्ति अपने सुख और दुख की अनुभूति इंद्रियों के द्वारा ना करके बुद्धि के द्वारा करता है। मात्रा के बाद शब्द है क्या, मात्रा के बाद क्या शब्द है इस श्लोक में, स्पर्शा। मात्रा के बाद शब्द है स्पर्शा। स्पर्शा का अर्थ है वे विषय जो मात्रा अर्थात इंद्रियों का स्पर्श करते हैं। ये विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है ना। इसके बाद श्री कृष्ण तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मात्रा स्पर्शा तू, तू शब्द का अर्थ है किंतु। तो यहां पर श्री कृष्ण तू शब्द का प्रयोग करके ये बताना चाहते हैं कि आगे वे जो भी बात कहेंगे वह केवल इंद्रिय विषयों के लिए ही नहीं है, अन्य विषयों के लिए है। तो इंद्रिय विषयों के लिए श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, शीतोष्ण सुख दुखदा, अर्थात इंद्रियों के विषय सर्दी गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान सुख और दुख प्रदान करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर उपमा दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार सर्दी तथा गर्मी की ऋतुएं हमेशा बदलती रहती हैं, अर्थात सर्दी के बाद गर्मी आती है तथा गर्मी के बाद सर्दी आती है, उसी प्रकार इंद्रिय के विषयों से भी जीवात्मा का सुख तथा दुख बदलता रहता है, समझे ना। अर्थात सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख मिलता रहता है। श्री कृष्ण ये बात प्रत्येक इंद्रिय विषय के बारे में कह रहे हैं। यदि इंद्रिय विषय को ना बदला जाए तो भी उससे प्राप्त होने वाले सुख दुख उसी प्रकार बदल जाते हैं जिस प्रकार सर्दी और गर्मी की ऋतुएं बदलती रहती हैं। जिस प्रकार सर्दी तथा गर्मी की ऋतुएं अपने आप बदलती रहती हैं, उनके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्या समझे। सर्दी के बाद गर्मी आती है बिना प्रयास के, कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। उसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय विषय से प्राप्त होने वाले सुख तथा दुख अपने आप बदल जाते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं आगमा पाइनो, यहां आगम का अर्थ है आने वाला तथा अपाइना का अर्थ है जाने वाला, अर्थात इंद्रिय विषयों से सुख आता है फिर चला जाता है, इसके बाद दुख आता है फिर चला जाता है। जिस प्रकार सर्दी की ऋतु प्रारंभ में उत्पन्न होती है फिर बढ़ती जाती है, क्या समझे। सर्दी शुरू में जो उत्पन्न होती है फिर बढ़ती जाती है और बाद में घटती हुई समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार किसी भी इंद्रिय विषय से प्राप्त होने वाला सुख प्रारंभ में उत्पन्न होता है फिर बढ़ता जाता है और बाद में घटता हुआ समाप्त हो जाता है। फिर जिस प्रकार गर्मी की ऋतु प्रारंभ में उत्पन्न होती है फिर बढ़ती जाती है और बाद में घटती हुई समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार उसी इंद्रिय विषय से दुख उत्पन्न होता है फिर बढ़ता जाता है और बाद में घटते हुए समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई विशिष्ट प्रकार का संगीत देखिए,
हाँ
उदाहरण के लिए कोई विशिष्ट प्रकार का संगीत प्रारंभ में लोगों के कानों को प्रिय लगता है और इसकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है, परंतु फिर कुछ समय बाद उस संगीत की लोकप्रियता घटने लगती है और फिर समाप्त हो जाती है। फिर एक ऐसा भी समय आता है कि वही संगीत व्यक्ति के कानों को अप्रिय लगने लगता है, सुनते सुनते बोर हो जाती है, तबीयत सुनने की इच्छा नहीं होती है। उसी प्रकार यदि कोई मीठी वस्तु हमेशा खाई जाती है तो वो स्वादिष्ट लगती है, फिर उसका स्वाद बढ़ता जाता है, परंतु फिर कुछ समय बाद उसका स्वाद घटने लगता है और अंत में उसका स्वाद समाप्त हो जाता है, फिर उसी मीठी वस्तु का स्वाद खराब लगने लगता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, है कि नहीं। इसके बाद शब्द है अनित्या। अनित्य का अर्थ है वह वस्तु जो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। इस प्रकार यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिससे सदा के लिए एक जैसा सुख या दुख प्राप्त होता रहे। जिस प्रकार सर्दी तथा गर्मी की ऋतुएं सदा घटती बढ़ती रहती हैं तथा उत्पन्न होती और समाप्त होती रहती हैं, उसी प्रकार इंद्रिय विषयों से प्राप्त होने वाले सुख तथा दुख सदा घटते बढ़ते रहते हैं तथा उत्पन्न होते और समाप्त होते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्ति का सुख ऐसा नहीं है। क्या समझे? श्री कृष्ण भक्ति का सुख ऐसा नहीं है। इंद्रिय विषयों के सुख तथा श्री कृष्ण भक्ति के सुख में दो प्रकार का अंतर है। पहला क्या है? यदि इंद्रिय विषयों के सुख की तुलना जल की एक बूंद से की जाए तो श्री कृष्ण भक्ति का सुख क्या है? समुद्र के समान है, कोई तुलना ही नहीं। दूसरा, यद्यपि इंद्रिय विषय का सुख अत्यंत तुच्छ है, फिर भी ये घटते हुए समाप्त हो जाता है तथा फिर दुख में परिणत हो जाता है। परंतु यद्यपि श्री कृष्ण भक्ति का सुख अत्यंत महान है, फिर भी ये सुख सदा बढ़ता ही रहता है। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक में की है। क्या? आनंदाम्बुधि वर्धनम, अर्थात श्री कृष्ण का गुणगान आनंद के समुद्र को बढ़ाता रहता है। इसके बाद शब्द है तान दतिच्छस्व, अर्थात उन्हें सहन करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन इन सुख तथा दुख के वेगों को सहन करें। परंतु सुख दुख को सहन करने का अर्थ क्या है? श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सुखों तथा दुखों के कारण व्यक्ति को अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। गीता 2:56 में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 56, भगवान कहते हैं, दुखेषु निद्विघ्नं मनः सुखेषु विगतस्पृहा, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मन दुखों में उद्विग्न नहीं होता तथा सुखों में उसका मन लालायित नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मन दुखों में उद्विग्न नहीं होता है। इस प्रश्न के उत्तर में श्रील प्रभुपाद उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है। कोई कष्ट अगर आए तो उद्विग्न क्यों नहीं होता है? कि भगवान की कृपा के रूप में वो उन दुखों को स्वीकार करता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। अपने को क्या सोचता है? मुझे तो और ज्यादा कष्ट मिलना था, भगवान की कृपा से मुझे कम मिला है। और वो देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह गए हैं। तो इस प्रकार से जो है ना, दुखों में वो सोचता है कि भगवान की कृपा से तो बहुत कम मिला मुझे, इससे बहुत बहुत ज्यादा मुझे दुख मिलना था। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मन सुखों में लालायत नहीं होता है।
इस प्रश्न के उत्तर में श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इसी प्रकार जब वो सुखी होता है तो अपने को सुख के अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वो क्या सोचता है, जब सुख आया तो क्या सोचता है कि ये सुख मुझे नहीं मिलना चाहिए, मेरी योग्यता नहीं है कि मुझे सुख मिलता है, लेकिन कृष्ण की कृपा से मुझे सुख मिला है, है ना। वो सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। अब गीता अध्याय 6 का 22वां श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं कृष्ण भक्ति के इस सुख को प्राप्त करके किसी भी सुख को वह इससे बड़ा लाभ नहीं मानता।